Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna,
Hare Krishna.
आप सबका स्वागत है श्रीमान विनोद जी विकुंठ मुकुंद और उनके परिवार के घर में आज सायंकाल के सत्संग में। जय बलराम और कृष्ण स्वरूप दास, ये पूरे परिवार ने आज हरि कथा का घर में आयोजन किया है। आप सब उसमें पधारे हैं, आपका स्वागत है और इनका आभार प्रकट करते हैं कि हमको भगवान की सेवा का अवसर दिया। विचार आया कि भागवत के ऊपर सत्संग करेंगे, तो भागवत, भागवत का अर्थ है वत का मतलब के समान, भगवान के समान। तो भगवान भागवत, भागवत का मतलब भगवान के समान। तो भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप है श्रीमद् भागवत। वांगमय रूप का मतलब शब्द रूप में भगवान श्री कृष्ण भागवत में प्रविष्ट हुए हैं। उद्धव के सामने भगवान श्री कृष्ण ने ये 12वें स्कंद में और 11वें स्कंद में ये संकेत किया है कि मैं भागवत में प्रविष्ट हूं और वो भागवत वैष्णव का प्राण है, सर्व शास्त्रों का पका हुआ फल है। भागवत सारे शास्त्रों का पका हुआ फल है। तो सब शास्त्रों का फल है तो सब शास्त्रों में सब कुछ होना चाहिए ना। ऐसे नारद जी पूछता है चार कुमारों से कि अगर पका हुआ फल है तो वैसे शास्त्र तो शास्त्रों में होना चाहिए। तो समझाते हुए उत्तर देते हुए चार कुमार कहते हैं कि आम के पेड़ में जड़ से लेकर पत्ते तक आम का जूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जूस कहां से आता है? पेड़ के अंदर से ही आता है, जड़ से ही आता होगा ना। लेकिन आम को चाकू मारोगे तो जूस तो नहीं निकलेगा ना। जब उसका आम पकेगा और ठीक तरह से जब उसको लोगे तभी जूस मिलेगा ना। तो है तो पेड़ के अंदर जूस, लेकिन मिलता तो नहीं। दूध गाय के अंदर होता है ना, तो गाय को चाकू मारने से दूध निकलता है क्या? नहीं निकल सकता ना। जब सही जगह पे सही नमूने से लिया जाएगा तभी निकलेगा। और जब बछड़ा गाय का पहले दूध पिएगा तभी दूध निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। गाय दूध नहीं देती जब तक उसका बछड़ा उसमें मुंह नहीं डालता है। तो ये भी पका फल तो है, लेकिन जब जो सुखदेव गोस्वामी जैसे के मुख से जब निकलता है तभी ये अपना रस भागवत का आस्वादन किया जा सकता है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए भागवत भगवान का स्वरूप है, सारे वेदों का पका हुआ फल है। रस पीना है तो ये फल से ही पिया जाएगा, पेड़ से रस नहीं मिल सकता है। तो ये उसका महत्व है। और फिर 12 स्कंद है भागवत के। स्कंद का मतलब क्या होता है? जैसे पेड़ के बड़ी बड़ी डालियां होती है तो डाली का मतलब स्कंद है। तो 12 स्कंदों का ये श्रीमद् भागवत है। 12 स्कंद का मतलब बड़े बड़े उसकी शाखाएं हैं। तो ये 12 स्कंद और इन 12 स्कंदों में 10 विषय श्रीमद् भागवत के 10 विषयों का वर्णन है। जैसे भगवद गीता में हम 5 विषयों की बात करते हैं। भगवद गीता में 5 विषय कौन से हैं? जीव, जीवात्मा, परमात्मा, कर्म, प्रकृति और काल। ये हो गया शास्त्रीय भाषा में। प्रचार के लिए आपको किसी को बोलना हो तब बोलना भगवद गीता में है। 5 विषय हैं। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं क्यों बंधा हुआ हूं संसार में, क्यों दुख भोग रहा हूं, कब से बंधा हुआ हूं, कैसे छूटूंगा। ये ऐसी भाषा है जो सब लोग समझ सकते हैं। मैं कौन हूं पता लगेगा, आत्मा हूं। मैं किसका हूं, भगवान का हूं, ममई वंश। मैं किसने मेरे को बांध के रखा है, प्रकृति में बंधा हुआ हूं। कब से बंधा हूं, काल के चक्कर में बंधा हुआ हूं, कैसे छूटूंगा, जब कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त करूंगा। तो ये साधारण भाषा में बोलने से लोग कहेंगे ये तो हमारे लिए है, मैं कौन हूं, किसका हूं, क्यों दुख भोग रहा हूं। ये पांच विषय भगवत गीता के, भागवत में दस विषय हैं। वो दस विषय जो भागवत में है वो बारह स्कंदों में वर्णन है, वर्णित है। किसी भी पुराण को तब पुराण कहेंगे जब उसमें दस विषय होंगे, नहीं तो उसको पुराण नहीं कहेंगे, उप पुराण कहेंगे, छोटा पुराण हो जाएगा वो, दस विषय अगर नहीं होंगे तो। तो उन दस विषयों के नाम है, पहला सर्ग। सर्ग का मतलब सृष्टि, सर्जन, जो भगवान विष्णु के द्वारा होता है। सर्जन किस चीज का सर्जन, भगवान विष्णु किस चीज की सृष्टि करते हैं, महतत्व, हाँ, पांच भूत आदि 24 तत्व जो है वो, जीव उनके कर्म, ये सब भगवान से निकलते हैं, लेकिन कोई भी किसी की शक्ल नहीं होती है, तो सर्ग उसको कहते हैं जो भगवान विष्णु। और विसर्ग दूसरा विषय है, विसर्ग विशेष सर्ग, जिसमें आकृति विकृति नाम रूप बनते हैं, ब्रह्मा जी जैसे जो सृष्टि बाद में करते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको, सर्ग और विसर्ग। जैसे जैसे हलवाई बाहर है ना, इसको सामान तो आपने लाके दिया ना, सब क्या लाके दिया, चावल का आटा, उड़द की दाल का आटा, हाँ, और थोड़ा सा जो भी घी, ये सब आपने लाके दिया, तो वो जो सामान लाके दिया वो हो गया सर्ग, वो विनोद ने किया। अब उसमें से इडली और डोसा बना रहा है, वो तो बना रहा है वो महाराज, अभी उसका नाम इडली डोसा पहले तो नहीं था, अब उसका नाम हो गया, तो वो हो गया विसर्ग। तो चीज उसमें से कैसे चीज बनाई, तो वो उसका नाम बदल गया ना, तो वो विसर्ग हो गया। तो ब्रह्मा जी कैसी सृष्टि करते हैं, भगवान हर एक जीव देता है उसके कर्म का साथ में, वो हार्ड डिस्क दे देता है कि इसके कर्म का पूरा इसके अंदर, और फिर सारे 24 तत्व सामान, वो मिट्टी जो मिट्टी बन, जिस चीज से बनाना है वो सामान दे देता है सारा। और ब्रह्मा जी कंप्यूटर के अंदर जीव के साथ उसके कर्म की डिस्क डालते हैं तो अंदर शक्ल आती है। आदमी बड़ा धर्मात्मा था तो इसको साधु बनाना है, तो मिट्टी तो वही होती है, उसको साधु के लक्षणों के साथ बटन दबा दिया तो कोई साधु के घर में जन्म हो गया। फिर दूसरे जीव का फोटो डाला अंदर, जीव डाला उसके कर्म का चिट्ठा डाला और अंदर गधा दिखाई दिया। अरे इसको इसको मिट्टी तो वही है लेकिन ये गधा बनना चाहिए। तो वो सिर्फ जैसे उसको जो जो चीज दिखती है वो बनाते जाते हैं, तो ऐसे 84 लाख जोनियां बनाते हैं, ये विसर्ग कहलाता है। तो सर्ग विसर्ग। उसके बाद तीसरा विषय है स्थान। स्थान का अर्थ है कहां, अगर सृष्टि करेंगे तो कहां करेंगे, खगोल भूगोल भाई, पृथ्वी आकाश तारा मंडल, ये सारा पांचवें स्कंद में वर्णन है, इस वर्णन है इसका, इसको स्थान बोलते हैं, वैकुंठ विजय भी इसको कहते हैं। चौथा विषय है पोषण। जब भगवान सृष्टि करता है तो उसका पोषण भी करेगा ना, जैसे माली बगीचा लगाएगा तो उसको पानी भी देगा और छांटी भी करेगा और काटी भी करेगा, तो किसी को काटेगा, किसी को पानी देगा, संवर्धन करेगा, तो उसको पोषण बोलते हैं। तो भगवान अपनी सृष्टि का पोषण करते हैं, तो पोषण विषय है भागवत का चौथा। पांचवा विषय पोषण के बाद है मनवंतर, नहीं उससे पहले ऊती। पांचवा विषय है ऊती। ऊती का अर्थ समझ में आता है, ऊती किसको कहते हैं, कर्म वासना, ऊती अथवा कर्म वासना, उसको ऐसे समझ लीजिए। ऊती शब्द ऐसे निकलता है, ये कपड़े होते हैं ना, उनते हैं बुनते हैं कपड़ों को, तो ये तीन धागे ऐसे हैं, तीन धागे ऐसे हैं, तो ऐसे कपड़े ऐसे बनते हैं ना, तो कौन सी डिजाइन कपड़े की बननी है, ऐसे तीन गुणों के कर्म, ऐसे तीन गुण, ऐसे तीन गुण, ऐसे तो तीन और तीन नौ, नौ और नौ 81, ऐसे 84 अलग अलग कर्मों की वासनाओं से कैसे कैसे अलग रूप मिलते हैं हमको, उसको कर्म वासना बोलते हैं, कर्म की वासना। ऊती का अर्थ है कर्म वासना। वासना का अर्थ समझ में आता है, वासना किसको कहते हैं मालूम है, वास शब्द तो सूंघने को बोलते हैं, है ना, जैसे ये फूल है, अभी यहां मैं फूल उतार दूंगा, इसके बाद इस कपड़े के अंदर इसकी खुशबू रहेगी थोड़ी, तो उसको कहेंगे वास फूलों की पड़ी है, एक तो ये अर्थ हुआ वासना का, वो चीज वहां नहीं है लेकिन उसकी खुशबू वहां रहती है, एक वासना का अर्थ है जैसे हमने खीर खाया, कहां खीर चोर गोपीनाथ का। अब खाया उसको, एक बार गए थे तब खाया, लेकिन कभी भी खीर की बात आती है, खीर चोर गोपीनाथ की खीर बड़ी टेस्ट है। इसका मतलब खीर नहीं है, लेकिन उसकी टेस्ट हमारे दिमाग में पड़ी, उसकी टेस्ट हमारे दिमाग से जाती नहीं। तो कोई कई चीजें हैं उनके हमारे दिमाग में शक्लें बनी हुई है। वो कभी कहते हैं कौन से दिन आते हैं यहाँ का, फाफड़ा और जलेबी के दिन आते हैं। एकदम फाफड़ा जलेबी दिखती है, जब आएगा तब, लेकिन दिमाग में घूमता रहता है। तो इसको वासना बोलते हैं। तो हमारे जो मन के अंदर ये वासनाएं सारी होती हैं, उनके आधार के ऊपर हमको अलग कर्म और अलग लेने पड़ते हैं। तो सातवें स्कंद में ऊती विशेष रूप से कर्म वासनाएं, असुरी वासनाएं हिरण्याकश की, देवी वासनाएं प्रहलाद महाराज की, मानवी वासनाएं शिक्षा चार वर्णों की, ये है। उसके बाद है मनवंतर। मनवंतर का अर्थ है कि शासन कैसे चलाया जाए। जब सृष्टि की है तो भगवान को शासन भी चलाना पड़ेगा ना। तो मनु, एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु आते हैं जो सधर्म की स्थापना करते हैं। सधर्म की स्थापना कि कैसा धर्म चलाना चाहिए। हर एक मनु ने कोई न कोई विशेष धर्म स्थापित किया है, तो उस सधर्म के द्वारा जो पालन करेगा तो उसके कर्म के वासनाएं नाश होने शुरू हो जाएंगी, प्राकृतिक वासनाएं भी नाश होने शुरू हो जाएंगी। और सातवां विषय इसके बाद का है, उसको कहते हैं ईशानु कथा। ईश अनु कथा, ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उसके पीछे चलने वाला है भक्त, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से आदमी के कर्म के जो वासनाओं के बीज होते हैं वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो ये नवा स्कंद ईशानु कथा है। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से बीज खत्म हो जाते हैं, और तब दसम स्कंद भगवान का प्रकट्य होता है, और वो विषय जो है वो है आश्रय। आठवां विषय है आश्रय, किसका शरण लेना चाहिए। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण आश्रय है, और फिर मुक्ति। मुक्ति नवा विषय है, और ग्यारहवें स्कंद में मुक्ति का वर्णन है विशेष रूप से, कि आदमी बंधन से कैसे मुक्त हो जाए, 24 तत्वों के बंधन से कैसे मुक्त हो, 24 अध्यायों में पूरा उद्धव गीता है। और फिर 12वें स्कंद में निरोध, प्रलय सब कैसे समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो ये 10 विषय हैं, इसलिए कि हम बहुत समय से भक्त हैं और भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारे कोई पूछे आपका धर्म कौन सा है, तो हम कहते हैं भागवत धर्म हमारा है। सनातन धर्म में एक भागवत धर्म है और एक स्मारक धर्म है। आपने कभी देखा है जब दो तिथि आती है, 1102 होती है, तो उसमें एक को लिखते हैं स्मारत, एक को लिखते हैं भागा। कभी देखेंगे पंचांग में लिखा हुआ स्मारत और भागा। भागा का मतलब भागवत धर्म पालन करने वाले वैष्णव उस दिन एकादशी करते हैं, और स्मारत उससे पहले दिन करते हैं। तो हम भागवत धर्म का पालन करने वाले, तो भागवत धर्म के पालन करने वाले हैं, तो भागवत के विषय हमको आने चाहिए। इवन हर भक्त के इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो पोषण, भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं। ये विशेष रूप से सब जगह मिलेगा, लेकिन मूल रूप से छठे स्कंद में भगवान के पोषण का वर्णन है, कि भगवान अपने भक्तों, कहीं किसी को मारकर पोषण करते हैं, किसी को जिलाकर पोषण करते हैं, लेकिन करते दोनों का पोषण। बड़ा अद्भुत है ये, जैसे मानो रावण को मारकर भी तो उसका पोषण ही किया ना, वापस उसको अपने धाम ले जाना है तो जल्दी ही करना चाहिए ना। तो भगवान किसी को, अब ऐसे है जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता है, आप उसको थप्पड़ मार के छोड़ के आते हैं, तो उसका भलाई के लिए करते हैं ना, उससे दुश्मनी तो नहीं है ना आप ही, तो ये पोषण ही तो करते हैं उसके, लेकिन डंडा मार के पोषण करते हैं हा? और कभी गुलाब जामुन खिला के पोषण करते हैं, और कभी थप्पड़ मार के पोषण करते हैं, ऐसे तो करते हैं बच्चों का, क्या करते हैं आप, पोषण ही तो करते हैं दोनों हाल में। तो कभी ऐसे नहीं कि भाई कोई भगवान के भक्तों को कष्ट आता नहीं है, ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा संसार में कि भगवान के भक्तों को कष्ट नहीं आता है, ये संभव नहीं है। लेकिन कष्ट में भगवान के भक्त भक्ति से विचलित नहीं होते, ये विशेषता है भगवान के भक्तों की। और कष्ट भगवान भक्तों को देता क्यों है, इसलिए कि उनको, जैसे बच्चे को आप लोग रात को जाग के पढ़ो, 4 बजे उठो किताब पढ़ो, क्यों इतनी कष्ट देते हैं उसको, स्कूल जाओ बस में जाओ क्यों देते हैं, ताकि अच्छा आदमी बने, बड़ा आदमी बने। ऐसे भगवान अपने भक्तों को चमकाने के लिए जैसे सोने को तपा के कुंदन बनाते हैं, ऐसे उनको भी तपस्या की भट्टी के अंदर पका के पक्का करते हैं, ताकि वो जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक उसका नाम गाया जाए। प्रहलाद का नाम हम गा रहे हैं, क्या प्रहलाद झूले में झूल रहा था, जैसे आपके सब घरों में एक झूला होता है झूलने का, तेरेना किसी घर में झूला नहीं था क्या, वो तो राजा था झूला लगा सकता था, लेकिन प्रहलाद कहीं झूले में झूला था क्या, कितने कष्ट देखे थे, क्योंकि प्रहलाद ने भगवान के लिए कष्ट देखे थे, इसलिए आज प्रहलाद को कोई नहीं भूल सकता। कोई भूला है आज तक प्रहलाद को, नहीं भूला है, क्यों, भगवान ने कह दिया बेटा आपने मेरे लिए इतने कष्ट सहे हैं, मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ करना। नरसिंह देव ने ये कह दिया, प्रहलाद को कह दिया क्षमस्व माम, मुझे माफ करना बेटा, आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, आपको इतना, आप मेरे को आने में देर हो गई, चेतना माप प्रहलाद के चरणित्र को 100 बार सुना, इसलिए कि भक्तों को कोई भी कष्ट आए तब भी भगवान की निष्ठा में जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए। ध्रुव महाराज का नाम हम सब पढ़ते हैं, वो भी तो बड़ी तपस्या, कठोर तपस्या 5 वर्ष में की ना, तो कष्ट ही तो सही, तभी तो उसका नाम चमक रहा है आज पूरी दुनिया में। उसकी निष्ठा इतनी थी, इतनी उसकी निष्ठा थी कि भगवान मिलेगा तो मिलेगा, और भगवान मिल ही गया, तो उसकी जो दृढ़ संकल्प और निष्ठा थी, इसके कारण महाप्रभु 100 बार ध्रुवचरित्र को सुना, 100 बार ध्रुवचरित्र को मचेतना महाप्रभु सुनते, और प्रहलाद चरित्र 100-100 बार सुना। क्यों सुना, इसलिए कि एक ने भगवान के लिए कितना कष्ट सहा है, फिर भी भगवान की भक्ति से विचलित नहीं हुआ है, और एक ने भगवान के ऊपर इतना दृढ़ संकल्प है कि बचपन में भगवान मिलेगा, उसने संकल्प किया और भगवान को दर्शन कर लिया, तो इतना बड़ा हमारा दृढ़ संकल्प भगवान के ऊपर होना चाहिए। तो इस 6ठे स्कंद में कैसे आरंभ होता है, मैं सूक्ष्म 2 शब्दों में कहता हूं, प्रश्न ये उठता है, 6ठे स्कंद के आरंभ में, 5वें स्कंद के अंत में, 2 अध्यायों में नरकों का वर्णन है कि 26 के 28 नरक हैं। तो किसी ने कहा बहुत कम है, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं, जितनी बदमाशी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा बनाएंगे, प्लाट वहां बहुत पड़े हैं और अलग ज्यादा बन सकते हैं, दुख मत करना कि नरक कम हो जाएंगे, इसकी चिंता मत कर। लेकिन प्लाटों में एक बार बॉर्डर के ऊपर स्वर्ग और नर्क में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, तो स्वर्ग वाले बोल रहे थे हम जाएंगे कोर्ट में आपके ऊपर केस करेंगे, तो नर्क वाले हंसने लगे, जाओ कोर्ट में, तुम्हारा केस कौन लड़ेगा, वकील सब नर्क में, तुम्हारे पास कहां से आए। तुम्हारा केस लड़ेगा कौन, तो नर्क का बहुत लंबा विस्तार हो सकता है। नर्क में जाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बड़ी प्रयास और परिश्रम करता है तब आदमी नर्क में जा सकता है। देखो क्या कम, चोरी करनी पड़ेगी, डाका डालना पड़ेगा, व्यभिचार करना पड़ेगा, अत्याचार करना पड़ेगा, पशु हत्या करनी पड़ेगी, तभी तो नरक में जाएंगे ना, नहीं तो कैसे जाएंगे। भगवान के पास जाने में क्या करने, हरे कृष्ण जपना पड़ेगा, इतना आसान काम भगवान के पास जाने है और इतना मुश्किल काम करना है तब नरक में जा सकता है, आदमी तो नहीं जा सकता है, लेकिन बदमाशी नहीं करेगा कैसे नरक में जाएगा। लेकिन आदमी कहते हैं जो मुश्किल काम है वही हम करेंगे, आसान काम नहीं करेंगे। बोला नाक को पकड़, हमने बोला पकड़ो, ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं पकड़ो, ऐसे जाके पकड़ो, ऐसे आते ही नहीं हाथ, आप पकड़ के दिखाओ नाक को, ऐसे पकड़े भाई नहीं पकड़ सकते, ऐसे पकड़े, पकड़ लिया क्या है इसमें। तो सीधा सा कहते हैं कि भगवान के पास जाने का सीधा रास्ता इसके ऊपर, नहीं नहीं नहीं, बहुत मेहनत करके जाएंगे। तो नर्क में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी हो तो बाद में नर्क में जाए। स्वर्ग जन्म बहुत, भगवान के पास जाना बहुत सरल है। तो नरकों का वर्णन सुना और नरकों के अंदर जो लोगों को दुख भोगना पड़ता है, अंगूठे जितना एक शरीर मिलता है उसको यातना शरीर कहते हैं, नरक में जो शरीर जाता है ये शरीर तो यही रह जाता है, वो तो एक यातना का शरीर मिलता है, उसको नाम ही यातना का शरीर है, जिसको दंड दिया जाता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा फिर लोग इस नरक से बचेंगे कैसे, परीक्षित तो भागवत है ना, उसको तो भक्तों को के लोग राजा है, राजा है तो प्रजा पूरी उसकी भक्त है, और राजा उसको बनने का अधिकार है जो अपने प्रजा को भगवान की भक्ति दे सके। तो मेरे परीक्षित महाराज को कहा कि नरक में सब लोग जाएंगे, मेरी प्रजा तो उनसे बच कैसे सकते। तो सुखदेव महाराज ने कहा पाप करेगा तो प्राश्चित करना पड़ेगा, भाई पाप का प्राश्चित है, हर एक पाप का, छोटे पाप का छोटा प्राश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्राश्चित है। परीक्षित महाराज कहे आदमी पाप करे फिर प्राश्चित करे फिर वापस पाप करे तो ये तो हाथी के स्नान के बराबर हो गया। हाथी स्नान करके धो के फिर मिट्टी लगाएगा तो फिर फायदा क्या हुआ। जैसे हमारे लोग सब कहते गंगा में स्नान करने जाए सब पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद वही काम करते हैं जो पहले कर रहे थे, वही करते हैं ना वापस आके। हम भाई भागवत कथा करा ली सब पाप धुल गए बराबर, भगवान का नाम लिया, लेकिन कथा के बाद आपने भगवान की भक्ति तो शुरू नहीं की, वही वही काम जो शुरू किया जो पहले कर रहे थे। तो पाप करने के बाद प्राश्चित करके फिर वापस पाप करे तो सुखदेव महाराज कहते हैं ये तो ठीक आपका कहना है, इसलिए ज्ञान प्राप्त होगा तो आदमी ज्ञान से पाप से बच सकता है। परीक्षित महाराज कहते हैं ज्ञान प्राप्त करे, सब लोग ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, सबको वेद पढ़ना तो नहीं आता है, सबको भागवत पढ़ना तो नहीं आता है, तो सबका कैसे उद्धार होगा। परीक्षित महाराज तो सबका भला चाह रहे हैं ना। तब सुखदेव महाराज ने विचार किया ये भागवत है, ये भगवान का महान भक्त है, ये इस कर्मकांड की विधि से पाप के प्राश्चित को में संतुष्ट नहीं होगा। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने पुरानी अगस्त से ऋषि से सुनी हुई कथा सुनाई कि भगवान के नाम केवल लेने से कई कोटि जन्मों के पाप कैसे भस्म हो जाते, और अजामिल का 3 अध्यायों में नारायण नाम से पापों से कैसे मुक्त हुआ उसका वर्णन किया। तो भगवान के नाम के बल से, भक्त के बल से नहीं, भक्त के प्रयास से नहीं, अपने शक्ति से नहीं, लेकिन भगवान के नाम की शक्ति से भगवान कैसे अपने भक्तों का पोषण करते हैं, नाम से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसमें अजामिल का 3 अध्यायों में चरित्र 6 स्कंद में है। तो ये कथा सबने सुनी है, अजामिल की कथा को हम न करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भगवान के रूप रस गंध आदि जो भी भगवान का है उससे भगवान कैसे पोषण करते हैं, कि भगवान के रूप से कैसे पोषण होता है, ये 4 स्कंद में कथा आती है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ, दक्ष को गर्दन काट दिया किसने, वीरभद्र ने, और भगवान शंकर ने बकरे का सर लगा दिया, मालूम है ना। अब दक्ष को तो बकरे का सर बहुत भद्दा लग रहा था, चादर नहीं लग रहा था, तो उसने जाके बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान का साक्षात दर्शन किया विष्णु का, उस भगवान के रूप के दर्शन से शंकर जी के अपराध से, परम वैष्णव के अपराध से मुक्त होकर दक्ष दोबारा 10 प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और फिर दोबारा प्रजापति बना। तो भगवान के दर्शन से, रूप के दर्शन से कैसे वो मुक्त हो गया, ऐसे आगे आता है कि भगवान का शब्द नाद उससे कैसे भगवान पोषण करते हैं। तो उसमें नारायण कवच का वर्णन आता है, नारायण कवच 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन है, जिसमें इंद्र को, इंद्र ने क्या किया था, अपमान किया, किसका, अपने गुरु का। गुरु बृहस्पति आया सभा के अंदर और बहुत से लोग बैठे थे ना, जब बहुत से लोग वाहवा करने वाले बैठते हैं ना किसी आदमी के पास, महाराज आप बहुत बड़े हो, महाराज आपकी जय हो, तब आदमी का अहंकार इतना बढ़ता है कि वो मर्यादा को भूल जाता है। गुरु बृहस्पति आया और उस सभा में बैठे हुए पूजने पूजा को देखकर उठा नहीं इंद्र, गुरु जी तो बड़ा समझदार थे वहां से चले गए, लेकिन गुरु की असंतुष्टि के कारण इंद्र श्रीहीन हो गया और असुर बड़े बलशाली हो गए। तब जाके प्रार्थना की ब्रह्मा जी को, उन्होंने कहा था अब आपको दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाना चाहिए, विश्वरूप के पास जाओ, तुष्टा के बेटे के पास। तुष्टा तो 12 आदित्यों में एक आदित्य है, देवता है, उसका बेटा विश्वरूप है, तो उसकी मां का तरफ असुरों का है, काल की कन्या का विवाह वहां हुआ था। तो विश्वरूप के 3 सर है, विश्वरूप को उन्होंने देवताओं ने प्रार्थना की, विश्वरूप पुरोहित बना, उसने नारायण कवच इंद्र को दिया। तो नारायण कवच के द्वारा इंद्र की भगवान ने पोषण किया। ये पोषण का भगवान का शब्द रूप है, जैसे नाद, तो इसका वर्णन है नारद। और उसके बाद विश्व रूप, क्योंकि उसके नानी का खानदान जो था वो असुरों का था, इसलिए वो यज्ञ के अंदर इंद्राय स्वाहा है, इंद्र को आहुति दे, फिर अपने नाने की तरफ कालाय स्वाहा, काल को आहुति दे। इंद्र बोले खर्चा हम करें, यज्ञ हम कराएं, और हमारे असुरों को भी शक्ति दे रहे। इसलिए पुराने जमाने में समझदार लोग सोचते थे, नानी के खानदान नौ पीढ़ी को देखते थे विवाह करने से पहले भी, कि नौ नानी का नौ पीढ़ी का खानदान भी सोच समझ के लेना चाहिए, कहीं भी विश्व रूप ऐसा करना। तो इंद्र ने वृत्रासुर का गर्दन काट दी, तीन गर्दन काट दी, तो वृत्रासुर सॉरी किसने विश्वरूप के तीनों गर्दन काट दी। तो विश्वरूप के पिता तुष्टा को क्रोध आया, देवता था, बोला इंद्र ने मेरे बेटे को मार दिया, ब्राह्मण की हत्या कर दी है। उसने यज्ञ किया और यज्ञ के अंदर से वृत्रासुर एक असुर पैदा हुआ, जिसने पैदा होते ही सबको ढक दिया, तो उसका नाम हो गया वृत्रासुर। फिर वृत्रासुर और इंद्र के बीच में बहुत बड़ा भारी युद्ध होता है, लेकिन वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली था। तब फिर इंद्र को भगवान के पास प्रार्थना करनी पड़ती है। भगवान विष्णु ने इंद्र को कहा कि चलो जाओ दधीचि ऋषि के पास, उससे उसकी हड्डियां मांग लो। और जब वो हड्डियां दधीचि ऋषि से लेकर उससे वज्र बना, तब वृत्रासुर और इंद्र का महायुद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर वृत्रासुर, पूरे युद्ध का वर्णन नहीं करते हैं, बड़ा अद्भुत युद्ध का वर्णन है। वृत्रासुर ने अपने त्रिशूल ऐसा मारा कि इंद्र अपने हाथी के साथ दूर जाकर गिरा, हाथी भी गिरा इंद्र भी गिरा। देवता हाहाकार मचाने लगे, तो मर जाएगा, लेकिन वृत्रासुर हंसने लगा, उठो उठो, ऐसे गरीब को हम नहीं मारते। तो इंद्र ने उठते बोले, तुम्हारे पास तो वज्र है, भगवान विष्णु ने दिया हुआ है, तुम मुझे मारोगे, मारो मारो, मारते क्यों नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ब्राह्मण की हत्या की है, मेरे भाई की हत्या की है, अपने गुरु की हत्या की है। विश्वरूप मेरा भाई था, ब्राह्मण था, तेरा गुरु था, तीनों की हत्या की है, इसलिए मैं तुम्हें। तो युद्ध के अंदर एक बाजू वृत्रासुर की काट दी, वज्र से दूसरी बाजू काट दी, फिर वृत्रासुर मुंह खोल के ऐसे मुंह खोला, इंद्र मुंह के अंदर इंद्र को निगल लिया, इंद्र वृत्रासुर के पेट में चला गया। देवता हाहाकार मचाने लगे, इंद्र के हाथ में वज्र था, और इधर इंद्र फिर वज्र से काट के बाहर निकला। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि पाद आदि लिखते हैं, वृत्रासुर तो समाधि में बैठ गया था, मरे हुए वृत्रासुर के पेट को काट के वज्र से इंद्र बाहर निकल के आया। कोई मरा हुआ था पहले से, उसको काट के बाहर निकल के आया। कहीं हमने इसको पर कथा कहीं बताई थी एक बार, कोई डरने वाले आदमी को कहा कि तुमको सेना में भर्ती करेंगे, और धर धर कांप रहा है कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को जाने में डर लगता है। बोला तुम्हारी पहले मेडिकल चेकअप करेंगे। चलो डॉक्टर ने आंख वाले कहा, देखो बेटा वो सामने क्या लिखा है। बोला कहाँ है। बोला दीवार पे। बोला दीवार कहाँ है। बोला ये अंधों को कहाँ लाए हो। उसको कुछ दिखता क्यों नहीं। बोला कल टेस्ट करेंगे। तो रात को सोया, सुबह उठ के कहता, रात में स्वप्न में युद्ध के अंदर चला गया था, ऐसा मैंने युद्ध लड़ा, हाथ में मेरी तलवार थी, मैंने एक बाजू उसकी काट दी, एक झटका मारा, दूसरी बाजू काट दी, फिर एक टांग काट दी। हमने पूछा तुमने गर्दन के ऊपर क्यों नहीं तलवार चलाई, इतने क्यों था। बोला वो तो पहले से कटा हुआ था। गर्दन पहले से कटा हुआ था, और वो भी स्वप्न में मैं तलवार मार रहा था। तो वृत्रासुर तो पहले ही समाधि में भगवान को प्राप्त हो चुका था। इंद्र के 1000 दांतों वाला वज्र 1 साल तक उसको काटने में लगा। मरे हुए काटने में तो ज्यादा टाइम लगता है, जिंदा सवेरे आसानी से कटता है। लेकिन वृत्रासुर ने जो बोला है 4 श्लोक, उसके लिए प्रभुपाद ने भागवत में लिखा है ग्लोरियस एक्टिविटीज ऑफ वृत्रासुर। और अभी पुष्पांग गोस्वामी कह रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी ने वृत्रासुर नहीं कहा है, श्री वृत्त, जैसे श्री शुक कहते हैं, ऐसे लिखा है कि ये 4 श्लोक केवल कोई भागवत ही कह सकता है, कोई साधारण व्यक्ति ऐसे श्लोक मुख से उच्चारण नहीं कर सकता है। तो ये 4 श्लोक वृत्रासुर के, इसमें से एक आधे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन यहां परीक्षित महाराज प्रश्न पूछता है कि इतना बड़ा असुर इसको कहते हो, लेकिन इसके अंदर इतनी भक्ति कहां से आई। तब सुखदेव महाराज कहते हैं ये वृत्रासुर बहुत बड़ा राजा था चित्रकेतु, और चित्रकेतु राजा का पूरा प्रसंग सुनाया उसको। अंगिरा ऋषि आया, बेटा नहीं था, बेटा हुआ, फिर नारद और अंगिरा आए बेटे के मरने के बाद, और तब जब उसको भक्ति और ज्ञान दिया और तब कहा कि अब तुमको 12 दिन में भगवान शंकरकृष्ण की उपासना का उपदेश करते हैं बलराम जी की। उसके बाद वो कौन राजा चित्रकेतु विद्याधर बना, भगवान शंकरकृष्ण का दर्शन, बलराम जी का दर्शन किया, फिर विमान में विद्याधर से जाते हुए शंकर जी को कैलाश में देखा, पार्वती को आगोश गोद में, तो हंसा, तो उसके ऊपर पार्वती ने उसको असुर बनने का श्राप दिया। इसलिए वृत्रासुर वही राजा चित्रकेतु है जो बहुत बड़े पहले भक्त और भगवान बलराम का दर्शन करके अहंकार मुक्त हो चुके थे, इसलिए उनके अंदर ये भक्ति पहले से भरी हुई थी। तो भक्ति वैसे भी कौन देगा हमको, बलराम जी आदि गुरु है, बलराम जी अथवा नित्यानंद जी आदि गुरु है, भक्ति तो वहां से ही मिलती है और वहां बलराम जी के द्वारा ही इसको भक्ति प्राप्त हुई थी किंग राजा चित्रकेतु को। तो वृत्रासुर के चार बहुत बड़े अद्भुत श्लोक है, उन श्लोकों के ऊपर गोस्वामी जी उनको उच्चारण करेंगे, कुछ बात वर्णन करेंगे और फिर आवश्यकता होगी तो थोड़ा सा और कथा करेंगे 5-10 मिनट। 9:30 बजे 9:45 तक हम समाप्त करेंगे ताकि प्रसाद खा के आप 10 बजे यहाँ जाने की तैयारी कर सकें। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए ये दे दीजिए गोस्वामी जी को, कुर्सी उधर कर लीजिए, थोड़ा कुर्सी में बैठो, उधर थोड़ी हटा लो। हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है जरूर पूछना बाद में। छठे अध्याय आई कथा समझ में आ रही है? कथा हो रहा है क्लियर सब कुछ?
हरे कृष्ण। पूर्व में अभी जो कथा प्रसंग हमने सुना था, प्रभु जी ने बताया, श्रीमद् भागवत की अभी चर्चा चल रही थी अपनी। श्रीमद् भागवत का अर्थ है, अन्वय किया जाए यदि उसका, भक्तानाम चरिता स भागवत, कि जो भक्तों का चरित्र है जिसमें वह भागवत है। भगवानस्य चरिता स भागवत, जिसमें भगवान का वर्णन किया गया हो वो भागवत है। तो दो अर्थ होते हैं, भक्त का और भगवान का, जिसमें भक्त भगवान की स्तुति करें और भगवान भक्त की स्तुति करें वही भागवत है। तृतीय स्कंध में भागवत की दो परंपराएं हमको प्राप्त होती हैं। एक तो है, पहले ये समझना जरूरी है कि भागवत क्या है। जैसे प्रभु जी ने बताया, श्री ठाकुर जी का वांगमय विग्रह है। वांग माने वाणी, अक्षर। ये जो भागवत लिखा हुआ है, शब्द हैं, अक्षर हैं, ये सब कृष्ण है। अपने मंदिर में जो राधा रमन लाल है, अपने मंदिर में जो राधा विनोद बिहारी हैं, और जो भागवत के अक्षर हैं, अक्षर में और विग्रह में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। जो विग्रह है वही अक्षर है, जो अक्षर है वही विग्रह है। तो इस बात को समझ लीजिए, जो हम हाथ में लेकर, भगवान हमारे लिए कितने सहज हो गए हैं, मंदिर में जाके सेवा कर पाना हर एक के लिए संभव नहीं है, पुजारी ही सेवा करने जाएंगे। परंतु भागवत, उस विग्रह को हम अपने हाथ में रख सकते हैं, उसको हृदय से लगा सकते हैं, उसको मस्तक पर बिठा सकते हैं, भगवान कितने सुलभ हैं। यह कहना कि भगवान हम पर कृपा नहीं करते ये गलत है। भगवान हर रूप में कृपा कर रहे हैं, हमें ढपोर संख्या जो नहीं ले पा रहे। हम नहीं ले पा रहे, भगवान दे रहे हैं। भगवान के देने में कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी है। अभी पूर्व में प्रभु जी ने बताया कि नरक में जाने के बड़े कठिनाई करनी पड़ती है और भजन करके ठाकुर के पास पहुंचना ज्यादा सरल है। ध्रुव जी का प्रसंग बताया कि ध्रुव 5 वर्ष का बालक, इसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ। पूर्व में जब तक यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं होता था तब तक उसको अक्षर आरंभ नहीं कराए जाते थे, उसको विद्या नहीं पढ़ाई जाती थी। जिस बालक को अक्षर ज्ञान नहीं है, विद्या का ज्ञान नहीं है, सही गलत का पता नहीं है, केवल घर में खेलता हुआ 5 वर्ष का बालक है, उसको ये कह दिया गया कि आपको वन में जाकर के तपस्या करने से भगवान मिलेंगे, और उसने दृढ़ निश्चय करके मात्र 4 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्ता नाम चरिता सब भागवत, भागवत भक्तों के चरित्रों से भरी हुई है। हर अध्याय में एक एक भक्त का चरित्र है। खटवांग राजा सबसे पूरे भक्तों के चरित्र में सबसे जल्दी भगवान को प्राप्त करने वालों में खटवांग राजा का चरित्र आता है। बोले कितनी जल्दी प्राप्त किया जा सकता है? बोले 2 सेकंड में। किसने किया? बोले खटवांग राजा ने किया। जब से उस राजा ने अपना होश संभाला तब से धनुष बाण हाथ में लिए, हिंसा का कार्य, पूरा जीवन देवासुर संग्राम में बीत गया, देवताओं की तरफ से लड़ते हुए सेनापति के रूप में। जब देवासुर संग्राम पूरा हुआ, देवताओं की विजय हुई, कहा महाराज क्या सेवा की जाए? बोले इतना बता दो मेरा जीवन कितना शेष है। बोले केवल 2 क्षण 2 सेकंड आपके पास बचे हैं, चाहे तो आप 2 सेकंड के लिए इंद्र बन सकते हैं, इतिहास में आपका नाम लिख दिया जाएगा कि राजा खटवांग भी इंद्रपद पर बैठे थे। बोले इंद्रासन तो बड़ी छोटी चीज है, मैं तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहते हैं। बोले 2 क्षण में कैसे कर पाएंगे? बोले बहुत सरल है, भगवान इतने कृपालु हैं कि 1 क्षण 1 सेकंड भी यदि उनका नाम पुकारा जाएगा, उनको पुकारा जाएगा, उनका बन करके उनको पुकारा जाएगा, तो तुरंत प्रकट होकर के वो स्वीकार कर लेते हैं। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु को प्रारंभ करते हुए भक्ति की जो परिभाषा दी, हम सबको याद होनी चाहिए, क्या है वो? उत्तमा भक्ति का लक्षण क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्ति उत्तमा। वही उत्तमा भक्ति है। कौन सी? जिसमें आनुकूल्येन श्री कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को अपना बना के उनका अनुशीलन नहीं कहा रूप गोस्वामी ने, क्या कहा? आनुकूल्येन कृष्ण, कृष्ण का बन करके अनुशीलन, उनकी सेवा करना, कृष्ण को अपना बनाना नहीं है, अपने हिसाब से भगवान की सेवा नहीं करनी, भगवान के हिसाब से भगवान की सेवा करनी। ये अंतर समझिए, इस बात को समझिए।
अनुशीलन को ऐसे भी अनु का मतलब जो पहले कर रहे हैं उनके पीछे चल के, अनुगामी मतलब उसके पीछे चल के, इसका अर्थ ये
है जो वैष्णव परंपरा से हमको सेवा प्राप्त है वैसे करनी, अपनी मन से नहीं। ध्रुव चरित्र में विष्णु चक्रवर्ती पाद जब टीका करते हैं, आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, विष्णु चक्रवर्ती पाद टीका में ध्रुव चरित्र में कहते हैं कि ये ध्रुव चरित्र क्या है? एक रूपक है, एलोगेरी है। ध्रुव की माता का नाम था सुनीति, ध्रुव के पिता का नाम था उत्तानपाद, ध्रुव की विमाता का नाम था सुरुचि, उसके पुत्र का नाम था उत्तम। यह एलोगेरी है, विष्णु चक्रवर्ती कहते हैं ये एलोगेरी रूपक है, एक शब्द के 2 अर्थ है। अगर हम भगवान की सेवा नीति आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं परंपरागत करते हैं तो फल क्या होगा? ध्रुव अटल सदा रहने वाला, और सुरुचि अपने हिसाब से सेवा करते तो फल क्या होगा? उत्तम होगा, परंतु वो बचने वाला नहीं। उत्तम की भी मृत्यु हुई थी, यक्षों ने मार दिया। सेवा का फल जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, सेवा का फल मिलेगा पर वो चिर स्थायी नहीं होगा, कृपा चिर स्थायी नहीं होगी, भक्ति चिर स्थायी नहीं होगी। आज भजन कर रहे हैं मन लग रहा है कल फिर हट जाएगा, क्यों? वो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। जो परंपरागत आचार्यों ने वैष्णवों ने जो किया है उसके वही आधारशिला मानते हुए हम करेंगे तो हमारा फल क्या होगा? ध्रुव होगा। विवाह में जब वर वधु को पक्का किया जाता था कि तुम्हारा विवाह हो गया तो ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता था। बोली ये साक्षी है, गवाह है,
आपको ध्रुव का दर्शन करा दे, तारे ही नहीं देखते रात के लिए,
दोपहर में विवाह हो जाता है यहाँ तारे कहाँ से दिखेंगे, उसको दिन में ही चांद तारे दिख जाते हैं, जिसका विवाह होता है उसको वैसे दिन में तारे दिखने लगते हैं, उसमें कह रहा है ध्रुव किधर है।
नहीं, हमको जबरदस्ती ध्रुव उठा के दिखाया था महाराज, देखो ध्रुव,
ध्रुव तारा,
ध्रुव का दर्शन करा,
भागवत दर्शन, ध्रुव के लोक को लौकिक वैकुंठ कहा गया, ये वैकुंठ है, ध्रुव जिसमें वास करते हैं वही वैकुंठ है, वैकुंठा देवी के यहाँ से जो वैकुंठ भगवान प्रकट हुआ उनका लोक वैकुंठ, वहां ध्रुव निवास करते हैं। मैंने परंपरागत करेंगे, आचार्यों की कही हुई वाणी के अनुसार चलेंगे तो ध्रुव, वही बात को वृत्त महाराज ने श्री वृत्त कहा, असुर नहीं श्री वृत्त। तो भागवत की हमने जो प्रारंभ में अगर दो परंपराएं प्राप्त होती हैं, भागवत स्वयं भगवान का विग्रह है, प्रकट हुआ दो लोगों ने, भागवत चतुर्श्लोकी चार श्लोक में सूत्र रूप में ब्रह्मा को प्रदान की, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने 18,000 श्लोकों में उनका विशद रूप का वर्णन किया, वही चार श्लोक भगवान शंकरषण को नारायण ने प्रदान किए, और शंकरषण ने वह चित्रकेतु को प्रदान किया, वही चित्रकेतु ने वही चार श्लोक, मैंने मूल भागवत जो है क्रम भागवत का सार, वही चार श्लोक श्री वृत्त महाराज ने हम वैष्णवों पर कृपा करते हो, हम दीन हैं, हम वैष्णव कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। वैष्णव का अर्थ क्या है? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में काशवानंद सिंह से जार मुखे सुनी एक कृष्ण नाम ताजन हो वैष्णव विधान। शिवानंद सिंह ने पूछा, महाराज आपने कहा वैष्णवों का शंकर हो, वैष्णव कैसे पहचानूं? बोले जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुन लो, जार मुखे सुनी एक कृष्ण नाम, जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम को सुन लो वही वैष्णव है। प्रमाण, शिवानंद सिंह के गांव का कुत्ता भी कृष्ण कृष्ण करते हुए आया, उनसे पहले सद्य मुक्ति प्राप्त कर गया। महाप्रभु ने कहा इस कोटिया ग्राम का तो कुत्ता भी मुझको प्रिय है, कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम ले, कृष्ण नाम कब होगा? कृष्ण की कृपा से। वैष्णव तो वही चार श्लोक जो हैं, आचार्यों ने कहा है कि यदि अपने को भक्ति में रमना है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान को कैसे पुकारना चाहिए, वह चार श्लोकों में वृत्त महाराज ने बताया, हम पर कृपा करी। कहते ना भगवान कृपा नहीं करते, भगवान हमारी सुनते नहीं है, घर में झगड़ा होता है पत्नी से, पति कहता है हे भगवान मुझको उठा ले, अब मैं जीना नहीं चाहता, घर से बाहर निकलता है, 50 माले की बिल्डिंग बन रही होती है, ऊपर से एक पत्थर छूट जाता है, पत्थर उस व्यक्ति के नहीं लगता, उस व्यक्ति को स्पर्श करता हुआ जमीन पर आकर टूट जाता है, व्यक्ति कहता है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मरने से बचा लिया। 10 मिनट पहले कह रहा था मुझे उठा ले, मैं मरना चाहता हूँ, मृत्यु का दर्शन कराया, बोले भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने बचा लिया। व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो गई है कि अपना ही अपना स्वार्थ, मैं खुश गया। प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही, गीता का पहला क्या है, मैं कौन हूं, तो उस मैं का स्वरूप का वर्णन किया सबसे पहले वृत्त महाराज ने, पहला श्लोक याद कर ले, जीवन में उतार रहे इस श्लोक को, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मना स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाकर्म करो तु काया। हे कृष्ण, हे भगवान, मैं ये जीव अहम, मैं हरे, हे हरि, हरे शब्द का क्या अर्थ होता है? जीव गोस्वामी ने महामंत्र की व्याख्या की है, हरे कृष्ण, हरे शब्द का अर्थ क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे शब्द का अर्थ क्या है?
श्रीमती
राधा रानी। हम में से 10 तक तो हिंदी सबने पढ़ी होगी, कवि बिहारी का एक दोहा आता था, 5 नंबर का क्वेश्चन आज भी आता है बिहारी के दोहे का अर्थ लिखने को, और सबसे प्रसिद्ध दोहा था बिहारी सत्सई का, मेरी भववादा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। ये बिहारी सबसे 700 दोहे लेके सबसे प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का, कविवर बिहारी का, मेरी भव बाधा हरो, मेरी जो भी सांसारिक क्लेश है उनको आप हर लीजिए, राधा नागर सोई, हे राधा तुम हर लो। अब यहाँ पर थोड़ा सा विज्ञान, जातन की झाई पर श्री राधा रानी के विग्रह कांति कैसी है, तप्त कांचन गौरांगी, सोने के जैसे तपी है, हल्का पीला फल क्रीम कलर, और श्याम कैसे हैं, नील मेघ के समान। तो नीले में पीला मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हरा। जा तन की झाई परे, झाई माने परछाई, श्री राधा की परछाई पड़ी है श्याम पे, श्याम हरित दुति होए, श्याम भी हरे रो गए, श्याम सुंदर भी हरे रंग में बराने, तो वही है हरे कृष्ण। वह राधा रानी के कौन से कृष्ण हैं जिन जिन श्याम सुंदर पे राधा रानी की छाया पड़ रही है। और कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कोई सुप्रीम लॉर्ड नहीं है, कोई इंद्र और ब्रह्मा के वो नहीं है, राधा रानी के सेवक हैं। और किसने कहा ये बात, प्रबोधानंद सरस्वती ने राधा सुधा निधि में प्रारंभ में कहते हैं, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्यात् धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगिन्द दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभान भवोदशेपि, कि जिन मधुसूदन, कौन मधुसूदन, योगिन्द्र दुर्गम मति, योगिन्द्र शिव की भी मति अर्थात तो बुद्धि में दुर्गम माने बड़ी कठिनता से जो प्रवेश कर पाते हैं, माने शिव भी जिनका ध्यान लगाए तो उनको भी बड़ी कठिनाई में ध्यान से आने वाले, ऐसे मधुसूदन कब प्रफुल्लित हो जाते हैं कि जब राधा रानी बैठी हों, राधा रानी के पीछे कृष्ण खड़े हों, आगे से श्री ललिता पंखा करें, वह हवा श्री राधा रानी की स्पर्श लेकर के उनकी जो ओढ़नी, वो ओढ़नी का स्पर्श करती हुई वो प्रसादी हवा जब श्याम सुंदर को स्पर्श करती है, यस्या कदापि वसनांचल खेल, राधा रानी ने ऐसे झटकारा, उससे जो वायु उत्पन्न हुई वह श्याम सुंदर के लगी, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत धन्याति धन्य भवनेन कृतार्थमानी, उस वायु को धन्य कहें, उस भूमि को धन्य कहें, उस अंचल को धन्य कहें, अपने आप को धन्य कहें, वह कृष्ण ऐसे हरि, अहम हरे, हे हरि, हे कृष्ण, तव तुम्हारे पादैक मूल, तुम्हारे यह जो चरण कमल हैं, ये मदन मोहन के जो चरण हैं, उन चरणों के भी कौन दासान दासो, उनके जो दास, उनकी जो सेवा करने वाले हैं, उनका मैं अनुदास, उनका मैं सेवा करने वाला बनना चाहता था, चाहता हूँ और चाहूंगा, भवतास्मि भूया, यदि अब इसके बाद मुझे कोई दूसरा जन्म दोगे तो कौन सा देना, श्याम सुंदर तुम्हारे चरणों की, कौन से श्याम सुंदर, महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया है किस श्याम सुंदर की पूजा करनी चाहिए, ब्रजेंद्र नंदन आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, श्याम सुंदर के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जो ब्रज में है, जो द्वारकाधीश है उनकी पूजा नहीं, ब्रज के संतों ने कह दिया, ब्रज की सीमा हूं से बाहर हरि हूं कूना निहार, यदि ब्रज की सीमा से बाहर साक्षात भगवान खड़े हैं तो हे मन तू उसको मत देख, रे मन वृंदा विपिन निहार। चैतन्य चरितामृत में राधा रानी के वचन को उद्धृत किया, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और राधिका का मिलन हुआ, कहा कि हे राधे तुम भी वही राधा हो, मैं भी वही कृष्ण, ये वही ललिता है, ये वही विशाखा है, ये वही यमुना है, चलो आओ आज फिर से रास किया जाए। राधा रानी का नहीं कृष्ण, अन्य हृदय मन आमार मन वृंदावन मोने बोने एक करे जानी, तहां तुम्हार पदोदय कराहो जदि उदय तबे तो आमी पूर्ण कृपा मानी। सबको छह पर वृंदावन नहीं है, वृंदावन के बिना रास संभव नहीं है, यदि तुम हम सबको लेके वृंदावन चलते हो तो रास है, नहीं तो अन्य जगह रास नहीं है। इसलिए रास की लीला जब भी श्रवण करनी हो तो वृंदावन में आकर श्रवण करें, ताकि वहीं पर वो रस उत्पन्न हो सकता है, वृंदावन से अतिरिक्त रास उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो हे कृष्ण, मैं उन तुम्हारे जो ब्रजवासी स्वरूप में जो तुम्हारी सेवा में रमे हुए वैष्णव गण है, उनका मैं सेवक बनना चाहता हूँ। भवतास्मि भूया मनस मरेता चुपतेर गुणास्ते, मेरा मन तुम्हारे उन्हीं गुणों को स्मरण करता रहे। कौन से गुण? अच्छे वाले गुण नहीं, बुरे वाले जो गुण है तुम्हारे अंदर, चोरी के, डाका डालने के, गोपियों को छेड़ने के, मेरा मन उन्हीं गुणों में लगता रहे। मनस मरेता सुपतेर गुणास्ते, जहाँ गुण की परिभाषा विष्णु चक्रवर्ती पान कर रहे हैं, बोले कौन से गुण? तुम्हारे अंदर चोरी का विशेष गुण है, झूठ बोलने का जो विशेष गुण है, सखाओं के संग मस्ती करने का जो विशेष गुण है, मेरा उन गुणों में मेरा मन लगे। तुम्हारे जो सार्वभौम स्वरूप है, उस गुण में जहाँ सृष्टि को तुम प्रकट कर रहे हो, एक मुख से निकल रहे हो, एक मुख से प्रकट कर रहे हो, उस स्वरूप में मेरा मन नहीं लगता, उसे तो तुम्हारा अर्जुन भी घबराता है। गीता में कह देता है भगवान इसको बंद करो, अच्छा नहीं दिखता है, अच्छे नहीं लग रहे, फोटो साइज में फिट नहीं बैठ रहे हो, दो चार इधर उधर निकल गए, बंद करो उसको। तो मनस मरेता सुपतेर गुणास्ते, मेरा मन उन्हीं गुणों में रम जाए, उन्हीं की चर्चा करता रहे। कैसे तुम चोरी करने जा रहे हो, कैसे तुम गोपियों के संग छेड़खानी कर रहे हो, मन उन्हीं में लगा रहे। मनस मरेता सुपतेर गुणास्ते, कैसे तुम भक्तों पर कृपा करते हुए खम्भ फाड़ करके नृसिंह के रूप में दर्शन दे रहे हो, मेरा मन उन गुणों में, कृपा वत्सलता में मेरा मन लगा है। गणित वा कर्म करो तुकाया, मेरी जो जिह्वा है, मेरी जो जीव है, केवल तुम्हारे ही नाम का उच्चारण करती रहे, तुम्हारे ही गुणों के गुणानुवाद में लगी रहे। और यह शरीर कर्म करो तुकाया तुम्हारी ही सेवा में लगा रहे। यदि ये पैर उठे तो ये मंदिर जाने के लिए ही उठे, यदि ये कान से कुछ सुनूं तो हरि कथा ही सुनूं, यदि इन आंखों से कुछ देखूं तो केवल तुम्हारा ही स्वरूप नजर आए, इस मुख से यदि मैं कुछ लूं तो वह तुम्हारा ही प्रसाद हो, इस सर्वांग पे यदि कुछ लगाऊं तो वह तुम्हारे वैष्णव, तुम्हारे जो चरण कमल की सेवा करने वाले वैष्णव गण है उनके चरणों की रज हो। गृणीत वा कर्म करो तुकाया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर सबसे पहले क्या कहते हैं? वर मांगो, अपने से दूर करने का वर मांगना, अपने से दूर कर देना, वर मांगो। तो अगले श्लोक में कहा, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्ध पुनर्भवम वा समन्य सत्पम ही एकांश। न नाक पृष्ठम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पृथ्वी का साम्राज्य भी नहीं, न ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, न शिव का शिवलोक, न इंद्र का स्वर्ग, न संकर्षण का पाताल, न मुक्ति, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तो बस तुमको ही पूजना है, तुम्हारा ही स्मरण करना है, बस तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा, मेरा स्मरण करना चाहते हो, मुझसे प्रेम करते हो, कैसे प्रेम करते हो? अगले श्लोक में प्रेम कैसे करना चाहिए। पहला हमारा श्लोक कौन सा हुआ कि हमारी स्थिति, मैं कौन हूँ? दासानुदास। हम अपने नाम के आगे प्रभु शब्द लगा के बड़ा खुश हो जाते हैं, हम प्रभु जी, हम प्रभु नहीं है, हम दास हैं। हम कौन है? दास। कोई पुकार बोले नहीं प्रभु नहीं, प्रभु तो मंदिर में बैठे हैं, वही प्रभु हैं, हम तो दास हैं। जब तक हम महाप्रभु की शिक्षा को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, एकदम तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, बोलने में अच्छा लगता है, उतारने में बड़ा कठिन है। बोलना अच्छा लगता है, उतारना कठिन है। उतारना आना चाहिए, जीवन में उतारना आना चाहिए। यदि जीवन में ये एक उतारना नहीं सीखा तो जीवन व्यर्थ है। केवल मानव शरीर ही 84 लाख योनियों में केवल एकमात्र मानव शरीर ही कर्म करने का अधिकारी है, बाकी जितनी योनियां हैं वो कर्म की नहीं, केवल भोग योनि है। कुत्ता कुछ भी करे उसको फल मिलने वाला नहीं है। कोई भी कर्म करता है आपको फल मिलने वाला नहीं है। हाथी कुछ भी करे, केवल भक्ति को छोड़ करके कोई भी कर्म करो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं, वो भोग योनी है, वो भोग भोग रहे हैं। केवल मानव तन को ही कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, ये विलक्षणता है, ये हमको दुर्लभता मिली हुई है भगवान की तरफ से। जैसे कहते हैं ना खेलों में वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो ये हमारे लिए वही है, हमको ये दुर्लभता मिली हुई है कि हम कर्म कर सकते हैं। हम कोई भी कर्म करेंगे उसका हमको फल मिलेगा, कुत्ता कोई भी कर्म करेगा उसको फल मिलने वाला नहीं है। केवल हरिनाम भक्ति में यदि लग जाएगा तो उसको फल मिल सकता है, अन्यथा उसको कोई फल मिलने वाला नहीं। हम कोई भी कर्म करें हमको फल मिलेगा, तब वह कोई भी कर्म भगवत प्रत्यक्ष क्यों ना करें, हम भगवान के लिए क्यों ना करें, अपने लिए तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती से आकर के पूछता है, प्रभु मेरे अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह बहुत भरा हुआ है, कैसे निकालूं? बोले उनको निकालो मत, रखा रहने तो बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़े भाग्य से मिलती हैं, तुम्हारे अंदर तो प्रचुरता में इनको भरा रहने दो, बस ये संसार की ओर जा रही थी इनको हटा के भगवान की ओर मोड़ लो। कामना करो काम हो तुम्हारे अंदर तो किसका, भगवत सेवा का काम हो। क्रोध करो तो किस पे, जो नाम नहीं लेता जो अवैष्णव हो उस पे क्रोध करो। लोभ हो तो किसका, बोले भजन का लोभ हो। बोले गुरुजी ने कहा था सोलह माला करना, समय तो हो गया, सोलह माला भी हो गई, अभी समय बचा है, चार छह माला और कर लेते हैं। लोभ हो भजन का, काम क्रोध लोभ मोह हो तो श्याम सुंदर के दर्शन का, मद हो तो मैं वैष्णव हूँ भक्ति भाव हूँ ठाकुर का प्यारा हूँ मुझे किसी बात का भय नहीं है, इसका मद हो। काम क्रोध लोभ मद मोह ये जो नरक को ले जाने वाले हैं ना, यही गुण भगवान की लीला में प्रवेश कराने वाले बन जाएंगे। जो धारा जा रही है संसार की ओर, उस काम क्रोध मद लोभ मोह को भगवान की ओर मोड़ दें, कोई भी चीज को भगवान की ओर कर दीजिए, वो भगवान की ओर ही पहुंचा देगी। किसी भी भाव से भागवत में देखेंगे, किसी भी भाव से भजिए, चाहे नारद की तरह निरंतर हरिनाम उच्चारण करिए तब भी भगवान मिलेंगे, या शिशुपाल रावण की तरह निरंतर गालियां दीजिए तब भी भगवान मिलेंगे, पर भगवान के लिए होनी चाहिए। कहने का अर्थ है हम भगवत प्रत्यर्थ हो। तो पहले श्लोक में हमने सुना हमारा स्वरूप क्या है, दासानुदास। दूसरा हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए कि हमको श्याम सुंदर के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कितना बड़ी बात कहती है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये घर ये संसार ये कुछ कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। बोले अच्छा प्रेम हो गया तुम्हारा स्थापित हो गया, प्रेम कैसे करते हो? अजात पक्षा इव मातरम खगा, तृतीय श्लोक में कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा, कि जैसे कोई चिड़िया का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, अंडे में से निकला है, घोंसले में बैठा उड़ना नहीं जानता, और पास में किसी चील को मंडराते हुए देख करके, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने टीका में लिखा, किसी चील को मंडराते हुए देख करके अपनी माँ चिड़ैया को याद करने लगता है, चिड़िया को याद करने लगता है कि माँ कब आएगी, माँ कब आएगी, क्यों माँ ही बचाएगी, मैं तो उन्हें नहीं जानता। तो जिस प्रकार वह चिड़िया का बच्चा जितनी आतुरता से जितनी फड़फड़ाहट तरफ से अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे ही मैं तुम्हारा श्याम सुंदर ध्यान करता हूँ। श्याम सुंदर ने कहा वो तो भय के कारण याद कर रहा है, यदि चील नहीं दिखाई देगी तो वो भय याद नहीं करेगा। तुमको किसी प्रकार का भय हो, इंद्र से भय हो तो चलो मैं तुमको भय मुक्त कर देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ, इंद्र तुमको नहीं मारेगा। बोले ना 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 इस उदाहरण को छोड़ दो, अच्छा दूसरा उदाहरण बताते हैं। स्तन्यम यथा वक्ष तथा क्षुधार्ता, अगली पंक्ति में कहा कि जैसे कोई बछड़ा बंधा हो और माँ गौचारण में गई हो गैया, अब उसके लौटने का इंतजार करता है, जैसे उसको भूख लगती है वो देखता है कब मेरी माँ आएगी और कब मैं दूध पीऊंगा, तो उसी तरफ से मैं तुमको याद करता हूँ। भगवान ने कहा वो तो भूख के लिए याद कर रहा है, तुम कहो तो अभी अपने मंदिर में छप्पन भोग लग रहा है, चलो दोनों चलते हैं वहीं खाएंगे पियेंगे। बोले नहीं नहीं महाराज उसको भी छोड़ो। तीसरा उदाहरण दिया, प्रियं प्रियेव व्यक्तम विषण्णा। इस पंक्ति की टीका में बड़ा सुंदर भाव जीव गोस्वामी ने प्रकट किया। एक स्त्री थी, महिला थी, उसकी नई नई शादी हुई, पति से बड़ा प्रेम, अटूट प्रेम, ऐसा टीवी पिक्चर में दिखाते ना ऐसा वाला बढ़िया वाला प्रेम, मक्खन वाला, अब पहले स्त्रियों की पढ़ाई तो होती नहीं थी। शादी के 10 दिन बाद पति बोला मुझे व्यापार के लिए विदेश जाना है। विदेश का मतलब पहले जापान लंदन नहीं होता था, गांव से बाहर जाना माने विदेश, शहर जाना विदेश। बोले मुझे विदेश जाना है, बोले मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, आई कांट लिव विदाउट यू। उसने कहा, उसको आता नहीं था पर फिर भी उसने कहा। जैसे पिक्चर में तोता मैना भी इंग्लिश बोलते हैं ना, ऐसे उसने बोला मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कब तक लौटोगे? बोले दो पाख में, मैं दो पक्ष में लौटाऊंगा। बोले मुझको तो गिनती नहीं आती, दो पक्ष 30 दिन कितना होता है। गांव के घर थे, पुराने घर थे, गोबर से लिपी हुई दीवार थी, उस पर खड़िया लेकर के 30 लाइन खींच दी। बोले रोज मेरे जाने के बाद एक पाई, एक लाइन को मिटा देना, जब जिस दिन अंतिम लाइन मिट जाएगी, अंतिम पाई मिट जाएगी, समझ लेना मैं उस दिन आ जाऊंगा। बोले ये ठीक है। 30 पाई खींची, पति चला गया, पति घर में नहीं है, सारे अलंकार जो थे, जितने आभूषण थे, जितने बढ़िया कपड़े थे, वो सब संदूकची में बंद कर दिए और एक साधारण से वस्त्र लेकर के और रहने लगी। रोज उठती, एक पाई को एक लाइन को मिटा देती। आज उसने देखा, आज तो एक ही लाइन बची है, आज मेरा पति आने वाला है। तो सुबह खूब बढ़िया पति को जो रुचिकर पदार्थ थे वह भोजन बनाया, सब घर की सफाई करी, जो कमरा था पति का वो साफ किया, सब कुछ रख करके तैयारी करके खूब बढ़िया कपड़े जेवर निकाल करके पहन करके और दरवाजे की ओर टकटकी लगा के बैठ गई। अब कोई बिल्ली आकर के चूहा आकर के भी खटका कर दे, पुराने किवार पे हवा भी चलती थी तो जोर से कीर्तन जैसे बजने लग जाते थे, दौड़ करके जाकर के देखे कहीं पति तो नहीं आ गया, कहीं पति तो नहीं आ गया। उसका संपूर्ण, उसको ना तो भूख लग रही थी ना उसको डर लग रहा था, वह तो केवल प्रेम में आकर के उसको पुकार रही थी। तो जितनी तड़प उस एक प्रियतमा में है, वह श्याम सुंदर, उतनी ही तड़प से मैं तुमको याद करता हूँ। भगवान ने कहा बस ठीक है, आ जाओ पास में, यही तड़प मुझको चाहिए। संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यदि कुछ दुर्लभ है तो भजन का आग्रह होना, नाम का आग्रह, आग्रह माने तड़प, तड़प होना ही दुर्लभ है। कि हाय मेरा एक दिन आज बिना नाम लिए, एक घंटा भी बिना नाम लिए कैसे चला गया। रीवा के राजा थे राजा रघुराज सिंह, इतिहास में उनका नाम आता, ओरछा के राजा राजा रघुराज सिंह जी, जिन्होंने जन्मभूमि बनवाई थी, जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था, अयोध्या में कनक भवन बनवाया था, ओरछा के राजा रघुराज सिंह। उनके दो अर्दली खड़े रहते थे, वो कोई भी काम करते थे, राम 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 राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम का सदा उच्चारण चलता रहता था। कोई कचहरी में कोई ऐसा काम आ गया कि अगर किसी कागज को देखने में व्यस्त हो गए और 2 मिनट से ज्यादा का समय, 2 क्षण से ज्यादा का समय यदि बिना नाम के बीत गया, तो उन 2 अर्दली की, जो 2 आदमी बगल में खड़े थे, उनकी केवल इतनी ड्यूटी थी, वो जोर से चिल्ला के कहते थे राम कहो अब देर भाई। राजा साहब काम छोड़ के राम नाम जपने लग जाते थे। केवल उन 2 सिपाहियों की यही ड्यूटी थी, वो केवल राजा पे निगाह रखते थे कि राजा ने 2 सेकंड हो गया इनने राम नाम नहीं लिया है, बस जोर से पुकारते थे राम कहो अब देर भाई, और राजा साहब राम नाम में लग जाते थे, एक क्षण भी नहीं मिटना चाहेंगे। भागवत ने कहा दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिनता से मिलता है, और देह नाम क्षण भंगुरा, और इस देह का स्वरूप क्या है, क्षण भंगुर, 1 सेकंड में नष्ट हो जाता है। और जिनके कारण हम ये प्रीति कर रहे हैं इस संसार में, ये मेरा पुत्र है, ये पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, कितनी देर का है, 1 क्षण का। जिस शरीर के स्पर्श मात्र से, गंध मात्र से हम खुश हो जाते हैं, ये हमारे पिता की गंध है, ये हमारे पिता का स्पर्श है। पिता यदि बालक के कंधे पे हाथ रख दे तो बालक में अपने आप एक स्फूर्ति आ जाती है, बालक दौड़ता है पिता की गोद में जाने के लिए। दोस्त जाता है दोस्त के संग कंधे पे हाथ रख के, यदि वो दोस्त मर जाए फिर कंधे पे हाथ रखेगा? स्पर्श भी कर लेगा तो उसको स्नान करना पड़ेगा, स्पर्श तो दूर की बात। वेदों में यहां तक लिखा है किसी मृत शरीर का दर्शन भी करो तो स्नान कर लेना चाहिए। इसका दर्शन ही इतना खराब है, उसके प्रति हम लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कैसा है ये शरीर, कितना है ये संग? ये बहुत सरलता से हरिदास महाराज, जिन्होंने बिहारी जी प्रकट किए थे, स्वामी श्री हरिदास जी, तानसेन बैजू बाबरा जिनके शिष्य थे, बड़ा सुंदर पद में उन्होंने लिखा, यह सब जीवत को व्यवहार। धनमद राजमद जौवन मद जो पंचिन में ढील, श्री हरदास यह जिये जानो तीरथ को सो मील। स्टेशन पे चढ़े, गाड़ी में बैठ गए, सामने वाले से दोस्ती बन गई, यात्रा चलती रही, उसका स्टेशन आया वो उतर के चला गया, दोस्ती उतनी थी केवल, जिसका स्टेशन आया वो चला गया। हम उसके संग दोस्ती है पर उसके संग उतर के नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं है, हमारी टिकट जिस स्टेशन तक की हमको वहां पहुंचना है, उससे ज्यादा की यात्रा नहीं कर सकते, उससे कम की यात्रा नहीं कर सकते, जितना लिखा उतना तक जाना पड़ेगा। और जिसने टिकट में, जिसके हमसे पहले का स्टॉपेज जितनी उसकी टिकट में लगाता है उसको वहां उतरना है, वो अभी हमारे साथ आगे यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टिकट पे नहीं रखा है। तो हमारे संग जो भी जीवन में मिले हुए हमारे नाते रिश्तेदार हैं वो सब कितना, उनकी टिकट सबकी अलग अलग है, एक साथ पूरी फैमिली सफर करती है बट टिकट सबकी अलग अलग होती है, सबकी टिकट अलग है, हर एक का स्टॉपेज निर्धारित है किसको कहां तक जाना है। तो जाएगा उसका स्टेशन आएगा, वो अपने स्टेशन पे चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। तो यह बात को समझते हुए कि ये सब गाड़ी में बैठे हुए हम सब लोग हैं, ये सब बंधु बांधव आपस में मिलजुल करके बात जैसे बात करते हैं ना ट्रेन में, ऐसे ही हम सब बात करके एक संबंध बना करके विराजमान। हमारा मूल स्वरूप क्या है? दासानुदास। हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, श्याम सुंदर की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं, और प्रेम कैसे करना है वह भी वृत्त महाराज ने बता दिया कि जैसे वो प्रियतमा नारी अपने पति के प्रेम में व्याकुल थी, पर वह तड़प यदि एक सेकंड के लिए हमारे मन में उदित हो जाए तो समझो कि अब जीवन में कोई और लक्ष्य नहीं बचा। वो तड़प उत्पन्न हुई और वह सामने ठाकुर के दर्शन हुए, वो तड़प ही तो प्रभु है। भगवान कहां से प्रकट होते हैं? भक्तों के हृदय से। भक्त का हृदय, भक्त कब बनेंगे? जब भक्ति विराजमान होगी हृदय में। भक्ति कब विराजमान होगी? जब वो तड़प आ जाएगी। वो तड़प आ गई, भक्ति आ गई, भक्त बन गए, भक्त के हृदय से भगवान सामने प्रकट हो गए। प्रहलाद के सामने कब प्रकट हुए थे? पूर्व में रक्षा कर रहे थे पर प्रकट नहीं हुए थे नरसिंहदेव। जब प्रहलाद की तड़प बढ़ गई कि हाँ हर वस्तु में विष्णु है, मैं हर जगह उसका दर्शन कर रहा हूँ, उस तड़प में जो प्रहलाद पागल हो गए, बस जिस खंभे की ओर इशारा कर दिया नृसिंह उस खंभे में से प्रकट हो गए। नृसिंह भागवत की स्टीका में भी भीष्म चक्रवर्ती बाद में कहा नृसिंह उस समय अदृश्य रूप में प्रहलाद की उंगली देख रहे थे कि भक्त मुझे किस चीज से प्रकट करना चाहता है, जिस चीज में कह मैं उसी में घुस करके प्रकट हो जाऊंगा। प्रहलाद ने कहा खंभे में, तो मैं खंभे में जाके पैरे बैठ गए, जैसे खंभा टूटा उसमें से नृसिंह प्रकट हो गए। कणकण में भगवान है, परंतु भगवान वहां कह रहे हैं मैं प्रहलाद की उंगली देख रहा था। सत्यम विधातुम निज भक्तिभाषितम, भागवत का श्लोक है, सत्यम विधातुम निज भक्तिभाषितम। इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो बनेगा निज भक्ति भाषितम विधातु करो तो सत्यम, कि निज भक्ति मेरा भक्त जो है, मेरा भक्त जो है उसने जो बोल दिया उसको मैं सत्य करूंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा ये सब शिला शिला कहते हैं, अरे शिला भी तो भगवान का ही स्वरूप है, ये भी स्वरूप है, मुरलीधर भी स्वरूप है, इस शिला में से मुझको दर्शन चाहिए। निशंक चतुर्दशी के दिन कहा, अगले दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को राधा रमन लाल प्रकट हो गए। ये कुछ पुराणों की कथा नहीं, अभी अभी की कथा है, महाप्रभु के बाद की कथा है, केवल 500 वर्ष पुरानी घटना है। शिला में से भगवान प्रकट हो गए, किस लिए? भक्त की तड़प ही तो थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि आपने भागवत में कहा है सत्यम विरातम ने जब भक्ति भाषितम, आप अपने भक्त की वाणी को सत्य करते हो, तो हे प्रभु एक बार बस दर्शन करा दो, दर्शन माधुरी के लिए मैं जी रहा हूँ। अगले दिन भगवान स्वयं भक्त को उठाते हैं, स्वप्न में आकर कहते हैं राधा रमन गोपाल उठो मैं तुम्हारे पास सदा के लिए आ गया, केवल दर्शन देकर के अप्रकट होने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी भक्ति पे इतना रीझ गया हूँ, इतना सब कुछ बिक गया है मेरा कि सदा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम सदा सर्वदा मेरे स्वरूप की पूजा करो, आनंद लो, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको व्यक्त कर दो। तो प्रभु कितने सहज हैं, एक बार पुकारा खंभे से प्रकट हो गए, एक बार पुकारा शिला से प्रकट हो गए, और कहां कहां नहीं प्रकट हुए, हाथी ने पुकारा तो गरुड़ छोड़ करके आ गए, प्रहलाद ने पुकारा और ध्रुव ने पुकारा तो सामने प्रकट हो गए, भक्त फिर भी आंखें नहीं खोल रहा, ध्रुव ने फिर भी आंख नहीं खोली, उसको हिला के कह रहे हैं अरे खोल मैं सामने आ गया। विष्णु चक्रवर्ती ने ये अंतिम वचन कहकर के वाणी को विराम देंगे। विष्णु चक्रवर्ती ने ध्रुव जी के चरित्र में बड़ा सुंदर वर्णन किया, भगवान सामने उपस्थित हैं, भक्त आंख बंद करके उनकी मनोहर छवि का हृदय में ध्यान कर रहा है, भगवान ने हृदय में से मनोहर छवि का आकर्षण किया और अपनी जो नारायण स्वरूप है उसको प्रकट किया, ध्रुव ने आंख खोली कि अरे वो मनोहर बंसी वाला कहां गया, देखा तो बंसी वाला सामने खड़ा है। अब 5 वर्ष का बालक उसको अक्षर ज्ञान नहीं, काका किसको देते उसको मालूम नहीं, अब भगवान की स्तुति करना चाहे, भगवान से कुछ कहना चाहता है पर वो कह नहीं पाता, जैसे गूंगे को गुड़ खिला करके पूछो कैसा लगा तो वो एक्सप्रेशन दे सकता है पर बता नहीं सकता, ऐसी ही स्थिति ध्रुव की थी। ध्रुव बहुत कुछ मन में उमड़ रहा है परंतु वो कुछ कह नहीं पाएगा, वो मालूम नहीं कैसे कहना चाहिए। भगवान भक्त की इस वत्सलता पे, इस प्रेम पे इतने रीझ गए हैं, विष्णु चक्रवर्ती कहते हैं इतने रीझ गए कि भगवान स्वयं रोने लगे कि हाय मेरे प्रेमी कैसे कैसे प्रेमी हैं। तो भगवान के उस समय मन के दृष्टि भक्त कहां तक सोच सकता है, भगवान के मन की स्थिति उस समय विष्णु चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, ये वैष्णव आचार्यों की कृपा है हमारे ऊपर, तुम भगवान के मन की बात उन्होंने लिख दी, कितने प्रियतम विष्णु चक्रवर्ती भगवान के मन की बात को लिखते हुए कह रहे हैं कि भगवान कह रहे थे मेरा मन कर रहा है कि मैं ध्रुव को भी गोदी में उठा लूं, और जितना ये मुझसे प्यार करना चाहता है उससे दुगने वेग से मैं इसको प्यार करूं, परंतु कर नहीं सकता, लीला का बंधन है, इसको अभी मैं ले लूंगा तो जो मेरे पास आ गया वो फिर जाएगा नहीं, मेरे पास आ गया तो केवल इसका कल्याण होगा, परंतु यदि ध्रुव 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेगा तो कितने भक्तों का कल्याण होगा। तो अपने फिर भक्त की कृपालुता को देखिए, हम जीवों के उद्धार के लिए भगवान कितने सहज हो गए कि अपने प्रेम का भी उन्होंने संकोच किया, और ध्रुव के गालों का स्पर्श जो आंसू आ रहे थे उनको पोंछने के लिए अपना 5 जन्म शंख जो था उस शंख का स्पर्श मात्र करा दिया, सीधे सीधे गाल को नहीं छुआ, बीच में एक अवरोध एक शंख को लाए, शंख को गाल पे लगाया, उसी समय 6 और 7 18 पुराण सभी वेद विद्या ध्रुव को कंठस्थ हो गई, और फिर ध्रुव ने स्तुति की कि हे प्रभु आप ही वाणी में बैठ करके जो वाणी स्वरूप है, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैंने आप ही वाणी है, मैंने आप ही अपनी स्तुति करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ध्रुव का भाव था।